ओके तू नसतो तिथं.
हा
अनुभव जिथे
नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्यागं नमो उभयचारागं नमो मे सर्वशासुरं मङ्गलं भगवान् वीरे मङ्गलं गौतमोपहि मङ्गलं कुन्तकुन्ताक्षे धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शैलं चयति शासनं शैलं चयति शासनं शैलं चयति शासनं तीसरी ढाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने इसमें सात तत्वों का बहुत लंबा विशेषकर समझ लिया है और अब आगे हमारे आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि ये सात तत्व की श्रद्धा तो हो गई थी.
अनुभव आवाज आवाज बता ने सबको आवाज आती है कि मेरे में आती है
अपना आवे छू के बाद जाती थी कि बहुत जो आवाज आवे कोली टिन टिन पर आवाज नहीं
वो इतना ट्रू 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 आवाज आता है तो आपकी
अभी ठीक है अभी ठीक है
कोई है वैसा ही है
मेरे को तो ठीक आ रही है बाकी
बहुत जो आवाज आवे
अनुभव जी आपको फिर से कनेक्ट करता हूँ पता नहीं मेरे को तो ठीक आ रही है पर मैं लेट मी
ट्राई. ओके ओके ओके
प्रीतिबेन तमने आवाज आवे
हाँ ना ना आवाज आवे छे અંકિત ભાઈ ના એમાં કનેક્શન માં કઈક લાગે છે કારણ કે એ ગયા ને તો હવે અવાજ નથી આવતો એમના તરફ
લાઈન બંધ કરી દીધી હતી ને અનુભવજી ની એટલે અવાજ નથી આવતો જરાય
એટલે
નહીતર તમે પછી ટ્રાય કરજો. રાઈટ રાઈટ એમને એક વાર ટ્રાય કરો તો હું કરું છું.
થેન્ક યુ.
સારું છે તમે લોકો છો.
अनुभव जी आ गए
अभी आप लोगों को क्लियर आ रही है आवाज
आती तो है लेकिन कम आती है पहले से थोड़ा आगे बढ़ो फिर बात बताते
ठीक है तो हमने लास्ट टाइम एक्चुअली ये देखा था कि जो सात तत्व है ये विधि जो श्रद्धा तत्व की तो समकित व्यवहारी इन सात तत्वों की इस प्रकार से की गई श्रद्धा ये व्यवहार सम्यक्त्व है. निश्चय सम्यक्त्व तो आत्मा को जानना आत्मा को जानकर फिर उसमें जो दृढ़ श्रद्धान होता है वो निश्चय सम्यक् दर्शन है. व्यवहार समय दर्शन इन सात तत्वों का सिद्धांत कैसा सिद्धांत की जैसे ये है वैसा का वैसा सिद्धांत। तो हमने तो बहुत लंबा डिस्कशन किया कि कैसे जीव है कैसे अजीव है आश्रम बल संवर नेचर मोक्ष। तो अभी कैसे डिस्कशन
की अवाज तो सेम अच्छे तरह ही वचन होती है
अनुभव जी ऐसा करते हैं प्रीति
लेट अनुभव जी मैं आपको फोन करती हूँ क्योंकि बहुत आवाज आती है।
ठीक है ठीक
थैंक यू अंकित अपने जस्ट ट्राई के इफ
आवाज ना आवे नहीं तो समझा तुम थी खबर पड़े थे कि बोले छे
क्या खबर है ये मेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैसे मुड़ा
एनीवे वी हैव टू पीपल एंड लेट प्रीति बेन ट्राई सो इफ इट मेक्स एनी डिफरेंस।
અત્યારે ખંડવામાં કઈ મીટિંગ ચાલે છે ભાનુબેન
ખબર નહી એ નથી ખબર મને ખંડવામાં શું છે પણ અનુભવ ખંડવામાં
જે ત્યાં છે ને ખંડવામાં
હા
એટલે કઈ સેમિનાર કે કઈ હશે એવું કે પછી પોતે લેક્ચર દેતા હોય ખબર નહી
હા તો સચિનભાઈ કીધું હતું કે ખંડવામાં હશે
અનુભવજી
હેલો
अभी अभी नहीं वो अभी क्लियर है
नहीं आपकी आती है थोड़ी जोर से बोलो तो अच्छा रहेगा।
अभी आवाज थोड़ी आई थोड़ी तेज में बोलता हूँ बोलने की कोशिश करता हूँ ठीक है। तो हमने देखा कि सात तत्वों की जैसे जिनका स्वरूप है वैसी श्रद्धा करना यह व्यवहार सम्यक्त्व है। ठीक है इधर तक अभी तक किसी के कोई प्रश्न इस अभी तक का क्योंकि हमने आखिरी में मोक्ष तत्व की भी बात ली थी और देखा था कि मोक्ष का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानते वो सकल कर्मतः रहित अवस्था तो शिव चिर सुखकारी वह मोक्ष अवस्था कैसी है सारे कर्मों से रहित है और वह स्थिर है ऐसी वह शिवरूप अवस्था बहुत सुखकारी है। तो हम बच्चों को पढ़ाते कि मोक्ष में क्या है कि वहाँ भूख नहीं होती प्यास नहीं होती रोग नहीं होते सोना नहीं होता जागना नहीं होता ऐसे पढ़ाते हैं बट मोक्ष में ये वाला सुख नहीं है कि चलो वहाँ भूख नहीं लगती इसलिए मोक्ष में सुख है बराबर। मोक्ष में सुख क्यों है कि वहां पर जैसे इंद्रिय दुख हमारे लिए वास्तविक दुख नहीं है इंद्रिय दुख तो कल्पना में हमने उसको दुख पाना है ऐसी इंद्रिय दुख के अभाव में प्रकट होने वाला इंद्रिय सुख वो भी सुख नहीं है। तो इंद्रिय दुख और इंद्रिय सुख ये दोनों एक साइड वो तो मोक्ष का सुख कोई विलक्षण जाति का अति इंद्रिय सुख है जैसा कभी चखा नहीं हमने संसार में, राइट। तो वह संसार के पुण्य और संसार के सुखों से एकदम विलक्षण, एकदम अलग जाति का कोई सुख वहां पर होता है सर्व कर्म रहित अवस्था में, वह मोक्ष है, वह सुखकारी है, हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, राइट। तो ऐसी जो सात्वत्व की श्रद्धा है वह व्यवहार सम्यक्त्व है। ठीक है, यहाँ तक कोई हमको प्रश्न नहीं होगा कि हमने बहुत चर्चा कर ली थी, फिर भी नहीं किसी को तो आप पूछ सकते हैं। हेलो,
हाँ
हाँ हाँ, आगे अब दौलत राम पंडित जी कह रहे हैं कि देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजित साधु। क्या तीन चीजें? देव कौन? जिनेन्द्र। देव कौन हुए?
जिनेन्द्र देव।
देव हुए जिनेन्द्र, गुरु हुए परिग्रह बिन। कौन गुरु कौन हुए? परिग्रह। और धर्म कौन सा हुआ? धर्म दया वाला। धर्म मतलब दया वाला, ठीक है, दया। धर्म दयाजित सारु येहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जित धारु। तीन चीजें, जिनेन्द्र देव, अपरिग्रही गुरु और दयामयी धर्म, इनको क्या जानो? इनको सम्यक्त्व का कारण जानो। एहु जान समकित को कारण, कि इनको सम्यक्त्व का तो कारण जानो और इस सम्यक्त्व को अष्ट अंग जुत धारो। इस सम्यक्त्व को अथवा इन धर्म को ही कैसा जानो? अष्ट अंग से युक्त जानो। हेलो,
हाँ जी,
आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है?
नहीं, आती है, आती है।
ओके ओके, हाँ। देव हुए जिनेन्द्र। हेलो,
हाँ जी, सुनाई देता है अनुभव जी।
अच्छा, मैं कंटिन्यू करूँ, राइट। हाँ, तो देव तो हुए जिनेन्द्र भगवान, ठीक है। जिनेन्द्र जिन इंडिय जिड़का, जिनेन्द्र भगवान देव हुए। दूसरे को गुरु हुए, वो कैसे हुए? परिग्रह के बिना वाले गुरु हुए। गुरु कैसे हुए? परिग्रह के बिना वाले। और धर्म कैसा हुआ?
दया।
धर्म कैसा हुआ? धर्म का
धर्म दया वाला
धर्म। बराबर बराबर, एक्सलेंट। तीन चीजें हुई, तीन की देखिए जो लक्षण है वो एकदम स्पष्ट है। देव होगा तो कौन होगा? कि वेरी स्पेसिफिक, जिनेन्द्र वो ही देव है। गुरु होंगे तो कौन से होंगे? अपरिग्रही। अब परिग्रह कितने प्रकार का होता है आपको पता है?
14
हाँ हाँ, परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का परिग्रह होता है। बराबर, तो परिग्रह मतलब ये नहीं कि उनके पास रोटी मकान ये कपड़ा गाड़ी फैमिली ये सब है कि नहीं, उनका बिजनेस है कि नहीं है। ये परिग्रह में जैन दर्शन ज्यादा गिनता नहीं है। सबसे पहले जैन दर्शन कहता है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अंतरंग परिग्रह। उसके पास एक मिथ्यात्व, चार कषाय और नौ कषाय, 1+4=5+9=14। ये 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। एक मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोक, चार कषाय एंड नौ कषाय, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। ठीक है, ये टोटल 14 क्या हुए? अंतरंग परिग्रह है। ठीक है, और इनके आधार से बाहर में 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह पनते हैं। इनके आधार से, अंतरंग परिग्रह के आधार से। तो गुरु कौन है? कि जो परिग्रह के बिना है, ये नहीं कि बहिरंग परिग्रह के बिना है, नो, वेरी स्पेसिफाइड, परिग्रह के बिना है। जो परिग्रह मात्र के बिना है वो गुरु, तो आप परिग्रही गुरु। एंड द फोर्थ थर्ड थिंग, जो धर्म है वो कैसा है? दयाजित, दयामयी धर्म है। ठीक है, बराबर तीन चीजें, देव मतलब कौन हुए?
जिनेन्द्र देव,
जिनेन्द्र देव। गुरु मतलब कौन हुआ?
परिग्रह के बिना जो होता है।
वेरी गुड। और धर्म यानी कैसा हुआ?
दया, दया वाला धर्म।
बहुत सारी क्वेश्चन इसलिए अब हमें उतनी चीज है, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ। धर्म तो वीतरागी होना था, वीतराग का युक्त होना था, दया से युक्त क्यों बोला? धर्म तो वीतराग, वीतरागी धर्म है ना हमारा, तो धर्म कैसा होना चाहिए था? वीतराग का युक्त होना चाहिए था, करेक्ट?
करुणा, करुणा के
बराबर। हेलो, क्या चीज?
मैंने बोला करुणा के हिसाब से बोलते हैं
यहाँ करुणा तो, लेकिन करुणा कौन सा? राग परिणाम है, राग थोड़ी धर्म है।
मतलब सही दया
तो राग का परिणाम है,
लेकिन सही दया तो जो मैं अपने स्वभाव में रहूँ, अपनी दया होती है ना।
अरे लेकिन हम यदि लोक में किसी से बोलेंगे कि दया वाला ही धर्म होता है, तो वो अपनी दया थोड़ी मानेगा, वो तो यही मानेगा कि दया मतलब प्राणियों की रक्षा करो। उतना क्यों कंफ्यूजन किया? वीतरागता बोल देते तो फिर अपनी होती वीतरागता, तो उसमें शुद्ध उपयोग ही आता। शुद्ध उपयोग धर्म है ना, वीतरागता धर्म है ना, तो दया चुप क्यों किया? एक ही क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, मुनिराजों का ये परिग्रह से रहितपना लक्षण क्यों बताया? उनको अपरिग्रही बोल, अपरिग्रही बोला है तो उनको निर्ग्रंथ बोल देते, ग्रंथी के बिना, वेरी स्पेसिफिक इट वुड हैव बीन, या फिर उनको वीतरागी या उनको शुद्धोपयोगी, जैसा कि समन भद्राचार्य ने बोला, ज्ञान ध्यान तपोरक्त, ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, जो शुद्धोपयोगी है। नियम सारे बोला शुद्धोपयोग वंत मुनिराज है, उनको आप परिग्रही क्यों बोला, या स्पेसिफिक यही वाले लक्षण क्यों लिए? एंड देव में जिनेन्द्र क्यों बोला? सिद्ध भी बोल सकते थे, पहले बात तो सिद्ध भगवान जिनेन्द्र है कि नहीं है, पहला क्वेश्चन तो ये।
लेकिन वो हितोपदेशी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जो उपदेश जो मिलता है वो अरिहंत देव
से। तो सिद्ध जिनेन्द्र होते कि नहीं होते? ओके, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें दौलतराम पंडित आपसे पूछने पड़ेंगे, कि आप इतने सारे ऑप्शंस थे आपके पास बताने के लिए। आपने देव का लक्षण जिनेन्द्र बता दिया, मतलब देव का परिचय आपने जिनेन्द्र शब्द से दिया, गुरु आपने परिग्रह के बिना वाले को बताया, और धर्म आपने दया वाला बताया, तो यही वाले स्पेसिफिक लक्षण, वाई डिड यू चूज ओनली दी? जब इतनी सारी और अच्छी अच्छी स्पेसिफिक परिभाषाएं हैं, शुद्धोपयोग धर्म है, वीतरागी धर्म है, शुद्धोपयोगी मुनिराज है, और क्या बोले मुनिराज को, वो तो जिनेश्वर देव के ज्येष्ठ बंधन है उनके बड़े, वो तो मोक्ष मार्गी, तीन दशाए चौकड़ी के अभाव पूर्वक विशुद्धता वाले वीतरागी, इतने लक्षण थे। देव में सिद्ध भगवान भी तो थे, सच्चे देव में, उनको क्यों नहीं लिया? तो फिर इसको थोड़ा एक एक करके डिस्कशन करेंगे, क्या चीज है। अभी किसी को इसमें कुछ कहना है?
यहाँ जिनेन्द्र देव बोलते हैं तो वो वितराग, वितराग तो वो जिनेन्द्र देव कैसे होते के? वो वितराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और हितोपदेशी होते, क्योंकि इन्हों से ही हमको, हाँ, तो सिद्ध भगवान को नहीं बोला, क्योंकि सिद्ध भगवान हमें उपदेश नहीं देते हैं, और यहाँ तो हमने कारण, कारण है ना, कि कारण कौन, कारण है
सम्यक का, तो कारण कौन है, सम्यक के कारण की बात है, बहुत सुंदर, सम्यक के कारण की बात है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, बहुत अच्छा, क्योंकि येहू मान समकित को कारण, राइट? देखिए स्टार्ट करते हैं,
लक्षण,
तो चार प्रकार के होते
हैं, चीजें है ना, लक्षण और कारण। तो आपने दया भी पूछा था, तो हमने, आपने हमको बोला था कि मुमुक्षक का लक्षण क्या, आपने वो श्रीमद जी का बोला था कि कषाय की उपशांता मात्र मोक्ष अभिलाष,
आपने याद है, वंडरफुल,
याद तो नहीं मगर नोट
बहुत, हम बहुत जेनेरिक तरीके से उसको स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक ले रहा हूँ, आप सबको पता होगा बट फिर भी आई एम रिपीटिंग, ठीक है। चार प्रकार के देव होते हैं, ठीक है, ये देवगति वाले नहीं। एक तो शुद्ध देव यानी सच्चे देव, दूसरे देव मतलब देवगति के देव, ठीक है। पहले कौन होते हैं? सुदेव, सच्चे देव। दूसरे होते देव मतलब जो देवगति के देव है, वो चार प्रकार के होते हैं, भवन त्रिक तीन और एक वैमानिक, बराबर कल्पोपपन्न, करेक्ट। तीसरी होते हैं कुदेव। क्या होते हैं वो? कुदेव, जो लोग हैं वो सच में देव तो नहीं, जो है देव बट वो है देवगति के, देवगति के हैं लेकिन जिनमें सुदेव की कल्पना कर ली गई है। है वो देव पर उनमें सुदेव की कल्पना हो गई तो वो कुदेव बन गए, क्योंकि वो थे वो सच्चा देव नहीं थे, वो तो देवगति वाले देव थे, बराबर।
हाँ।
है देव, उनमें कल्पना हुई सुदेव की तो वो बन गए कुदेव, ठीक है। कुदेव जैसी कोई चीज नहीं होती, वो मान्यता में होता है कि हमारी मान्यता में ये भगवान बन गए, लेकिन ये सच में भगवान तो है नहीं, ये तो बताओ व्यंतर है, ये तो भवनवासी है, ज्योतिष है, इससे हमारे भगवान हो जाएंगे।
हाँ, अनुभव जी, यहाँ कुदेव, हाँ यहाँ कुदेव वो हमने बोला कि वो देवगति के देव है, परंतु उसमें हमने सुदेव की कल्पना की है, परंतु कई देव तो ये हिंदू उन लोग जिसको देव बोलते हैं कि जो शिवलिंग है तो वो तो पत्थर है के, तो उसको भी देव बोलते
बताता हूँ इसमें पाएगा। पहला इस सुदेव, सेकेंड इज देव जो कि देवगति के, तीसरे कुदेव एंड चौथा इज अदेव जो देवी नहीं है, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हुआ वो देवी नहीं है लेकिन उसमें भगवान की कल्पना, गाय की पूछ, गाय हुई वो देव नहीं है लेकिन उसमें भगवान की कल्पना। ऐसे आप जैसा बोल रहे हो शिवलिंग हुआ, अब वो थोड़ी कोई देव का स्वरूप है ऐसा भी भर, तो वो देव। तो ऐसे ये वाली सारी चीजें कि मैं गया और वहां पर एक पत्थर है, उस पत्थर में बड़ा जाओ तो चमत्कार होता है, तो पत्थर को मानने लगे। कहीं भी आप जाएंगे इंडिया में तो आप किसी भी ऊपर पहाड़ पर जाइए और वहाँ कोई अच्छा सा पत्थर मिले, वहाँ ऑरेंज कलर कर दीजिए, आप अगले साल जाएंगे वहाँ आपको मंदिर बना मिलेगा। सो इट्स वेरी इजी यहाँ पर ये। तो ये जो वस्तुएं है ही नहीं, तुलसी का पेड़ कितना लोग मानते हैं, तो ये क्या है? अदेव, वो देव ही नहीं है, वो ना तो चार देव वाले स्वर्ग के देव है, व्यंतर भवन दासी ज्योतिष कल्पोपन्न, ना तो वो सच्चे वाले देव है। तो देव तो वो चार देवों में जब देवों की कल्पना होती थी तो वो कुदेव होता था, बट ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो पुद्गल जड़ चीजें हैं, पत्थर पड़े थे। अब गंगा नदी है, नदी कैसे देव हो गई एक, बराबर, वो गंगा मैया बन गई, करेक्ट। तो ये सारी चीजें आदेव के, वो देव ही नहीं है, उसको देव की कल्पना हो गई, ठीक है। ये चार चीजें हो गई, तो इस जगत में चार चीजों में देव यानी भगवान की कल्पना की जाती है, बराबर। आप वेद और पुराणों में जाएंगे तो वेदों में सूर्य देव, अग्नि देव, वायु देव, इंद्र देव, बराबर, इन सारे देवों की चर्चा आती है। ये एक्चुअल में स्वर्ग के देव है, जो जब वेद लिखे गए होंगे तब इनका आना जाना यहाँ पर होता था, तो जब उस टाइम लिखे गए और वैसे कल्पना से उत्पन्न नहीं है सब, तो वो तो कैसे, वो मधु पिंगल की कहानी आती है अष्टावक्र ग्रंथ में, उस मधु पिंगल के कारण ये वेदों की रचना यहाँ पर हुई, इसकी पूरी कहानी है हरिवंश पुराण में। आचार्य
शंकर ने लिखा है, दोबारा बोलेंगे किसकी कहानी?
मधुपिंगल, मधुपिंगल राजा। तो क्या हुआ, एक जगह स्वयंवर हुआ, ठीक है, स्वयंवर हुआ एक का, तो उस पर बड़े बड़े राजा लोग आए स्वयंवर में भाग लेने के लिए, तो इसमें एक मधुपिंगल नाम का राजा भी आया। तो वो बड़ा वैभवशाली था, शक्तिशाली था, ज्ञानशाली था, तो उसके स्वयंवर में जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, कि स्वयंवर में उसके साथ राजकुमारी की शादी हो जाएगी। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है बट मैं जस्ट जस्ट दे रहा हूँ कि ऐसी हमारे पुराण में कहानी है वेद की उत्पत्ति की। तो ये भाव बाहुल में आचार्य कुमकुम देव ने कहानी की गाथा कोट करी है कि देखो, भाव की शुद्धि के बिना मधु पिंगल ने भी तप किया, वो मुनिराज बना, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई सिद्धि नहीं हुई। बराबर ये उदास पावर की गाथा है, बाहुबली मुनिराज को भाव पावर में याद किया है, जम्बू स्वामी के पूर्व भव को इंद्रजीत मुनि को भाव पावर में याद किया है, ऐसे अलग अलग क्या बोलते हैं इंद्रभूति नहीं इंद्रभूति बोल रहा हूँ तिलतुष मात भिल्लम वाले कौन से मुनिराज है मुनिराज को कुछ याद रहता था क्या नाम
श्रीभूति
मुनिराज शिवभूति मुनिराज उनको आचार्य कुंदकुंड देव ने मूल गाथाओं में नाच मुनिराजों को याद किया है। उन्होंने दो वो बताए हैं रिफ्लेक्स बताए क्या कि एक तो देखो भाव की विशुद्धि के बिना बाहुबली मुनिराज ने एक साल तक किया कुछ नहीं हुआ और ज्ञान के बिना भी शिवभूति मुनिराज ने किया तो देखो इतने में ही वो तिर गए। ऐसे अपव्य सेन ने 11 अंगों का पाठ किया लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि आज भाव की विशुद्धि नहीं थी। तो ऐसे उसने कहानी आती मधुपिंडल मुनिराज की तो वो स्वयंवर में तो दूसरा एक राजा आया था उसको बड़ा वो लगा कि यार मुझे जीतना है स्वयंवर मुझे राजकुमारी से ब्याह करना है तो उसने ऐसा फैला दिया। तो क्या किया इसने एक सामुद्रिक शास्त्र बनाया। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब आपको पता है मतलब हाथ देखकर भविष्य बताते हैं शरीर के चिन्ह देखकर भविष्य बता देते हैं मस्तक की ललाट की रेखाएं देखकर भविष्य बता दिया जाता है। बराबर ये ज्योतिष शास्त्र में सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है जिसमें शरीर के लक्षण देखकर बताया जाता है। बराबर तो ये जो दूसरा राजा है इसने क्या किया सामुद्रिक शास्त्र की रचना करवाई काल्पनिक और उसमें लिखा कि जिसका पिंगल वर्ण होता है थोड़ा जो पेल जो मधु पिंगल का शब्द इसलिए पड़ा था उसका नाम क्योंकि वो थोड़ा पेल था और उसके आंखों की थोड़ी जो बनावट थी वो थोड़ी सी दिख रही थी नॉर्मली वो सुंदर था बट कलर पेल था और आंखों की बनावट अलग थी तो उसने सामुद्रिक शास्त्र बनाकर उसने ये लिख दिया बहुत बड़ा शास्त्र बनाया ठीक है उसने अपने मंत्री से बनवाया था जिससे बनवाया था
उसने
बोला कि महाराज सामुद्रिक शास्त्र मतलब ज्योतिष शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं शरीर के लक्षणों को बताते हैं इसकी उंगलियों में ऐसा है इसकी रेखाएं ऐसी है इसका अंगूठा इतना छोटा है उंगली इतनी बड़ी है ऐसे अलग अलग लक्षण जो होते हैं ना इसकी जो ऐसे जब ये मुट्ठी बनाता है तो ऐसी रेखाएं पड़ती है इन सबके मतलब होते हैं तो वो लक्षणों से भविष्य बता देने वाले शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं ठीक है। तो उसने कल्पना से उसने बनवाया तो उस लक्षण में बहुत सारे तो सही लक्षण लिखे इसके लिए तो विश्वास कैसे होगा कि सही शास्त्र है और उन राजा के पास गया और उसने उन राजा को भेंट के लिए महाराज हमारे सामुद्रिक शास्त्र भूगर्भ से निकला है आप इसको पढ़िएगा इस बार। तो सामुद्रिक शास्त्र उसने क्या लिखा कि जिसके शरीर का ऐसा वर्ण हो जिसके नेत्रों की ऐसी आकृति हो वह शीघ्र श्रीविहीन होकर मरण को प्राप्त होता है वो जल्दी मर जाएगा। तो अब राजा ने जब ये पढ़ा तो वो मधुपिंगल को देखा तो उसने बोला भाई ये तो एकदम अभी खत्म हो जाएगा तो राजा ने उसके साथ इनका ब्याह ना कराकर इनके साथ करा दिया। तो मधुपिंगल को बहुत वो लगा वैराग्य हो गया कि यार ये ऐसा कैसा मेरे लक्षण ऐसे है उनको बड़ा विश्वास हुआ ठीक है। तो उन्होंने दीक्षा ले ली मधुपिंगल राजा ने उन्होंने दीक्षा ली बट वो मन में बहुत ही किस लिए दीक्षा ली कि यार ऐसा है मेरे लक्षण ऐसे है ये है वो है तो दीक्षा ली दीक्षा लेते हुए डिस्टर्ब करते रहे और बाद में किन्हीं कारणों से उनको पता भी पड़ा कि ये तो छल था ऐसा तो कोई सामुद्रिक शास्त्र था ही नहीं ये तो कल्पना से बनाया गया था। तो उन्होंने बहुत क्रोध आया और उन्होंने निदान किया कि मैं अगले भव में उस राजा को उसके बदला निकालू मतलब जो भी है उससे मैं उसका प्रतिशोध लू। तो वो जाकर व्यंतर हुए अब जब वो व्यंतर हुए उनको जाति स्मरण हुआ ये सब हुआ तो उन्होंने कैसे बदले निकालने की बात सोची वो क्या गए वो उसके राज्य में गए और वह राज्य के अंदर उन्होंने एक कल्पना से शास्त्र लिखा ताड़ मतलब ताड़ भी शायद तांबे के पत्रों पे या कुछ भी उन्होंने बहुत बड़ा शास्त्र लिखा और उसको जमीन के अंदर विक्रिया तो है उसने गढ़वा दिया और राजा से बोला राजा बहुत राजा को एकदम ऐसे करके बोला राजा तुम्हारे देश में कोई शास्त्र है यहाँ पर भगवान का बहुत उसको निकालो और उसके हिसाब से काम करो। अब वो शास्त्र मतलब इसमें देखना बदला लेने का तरीका कैसा प्रयुक्त किया, तो उन्होंने वो शास्त्र को देखा कि उधर पर उनको शास्त्र निकला के नहीं थे, तो उन्होंने बोला भाई ये तो गजब है, शास्त्र की पूजा वगैरह कराई और अब उस शास्त्र में यज्ञ का वर्णन था, जीवों को होम करने का वर्णन था कि तुम पशुओं की बलि दो, तो फिर राजा तो अब एकदम उसको लगा के जो देवों के द्वारा आया है, बोलते नहीं वेद किसने लिखे हैं, देवकृत है, ऐसा नहीं बोलना चाहता, वेद हमेशा से किसी ने बनाए नहीं है, तो एक्चुअल में भीमसेनाचार्य भीमसेनाचार्य ने वहां लिखा कि वेद वास्तविक में उस यंत्र देव ने अपने प्रतिशोध के लिए बनाए, क्या किया उसने, उसने राजा को बदला कैसे लिया, इस चक्रव्यूह में डालकर कि वो वेद उसने उठाए, उनको प्रमाण माना, उनको आज्ञा वाला माना कि उनकी आज्ञा माननी चाहिए, और फिर इसके हिसाब से उसने यज्ञ की रचना करी और यज्ञ में पशुओं की बलि दी। अब यज्ञों में पशुओं की बलि देगा तो क्या होगा कि इससे उसका घोर पाप होगा, घोर पाप होगा तो वह नरक में जाएगा, बराबर, तो उस यंत्र ने ये वाला तरीका प्रतिशोध का निकाला कि उसने मेरे साथ कोई छल वाला शास्त्र बनाकर मेरे साथ बुरा किया, तो मैं भी कोई दूसरा छल वाला शास्त्र बनाकर इसके साथ बुरा करूं, तो उसने समुद्रिक लक्षणों वाला शास्त्र बनाकर उसके लक्षण गलत बताए थे, इसने धर्म का शास्त्र बनाकर धर्म का लक्षण गलत बता दिया, राइट, तो इस समय से वेदों की यज्ञों की पशु बलि की परंपरा चल पड़ी, तब से वेदों को देवों के लिए बोला जाता है, देवों ने बनाए, ये ऐसा है धर्म का स्वरूप, यज्ञ दोगे तो देव प्रसन्न होंगे, पशु बलि दोगे तो प्रसन्न होंगे, ऐसे घोर पाप की परंपरा चली, और वो अकेली राजा को इसका पाप नहीं पड़ा, तो वेंटर को भी ऐसी परंपरा चलाने का कारण होने के कारण बताओ कितना भयंकर, वो तो लिखकर चले गए होंगे, उन्होंने तो खेल खेल लिया होगा अपना, बट अभी चौथा काल भी बीत गया, तो सब की कहानियां है पुराने काल की, और अभी तक ये सारी परंपराओं में कैसे कैसे मत चलते हैं, आपको भी पता है इंडिया में क्या हुआ, पॉल्यूशन को भगाने के लिए यूपी में एक जगह क्या किया, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ में क्या किया कि पॉल्यूशन खत्म हो गया, कैसे होगा कि उन्होंने आम के पेड़ों को जलाया, बहुत सारे उनका यज्ञ किया, आम के पेड़ की लकड़ी बहुत सारी भर भर करके पेड़ काटे गए, उनकी लकड़ियां ली गई और उनको फिर जलाकर यज्ञ में होम किया, क्योंकि आम के पेड़ की लकड़ी से वो ऐसा मानते हैं कि पर्यावरण शुद्ध होता है, प्रकृति शुद्ध होती है, अब जहाँ पेड़ लगाने चाहिए इम्प्रूव द एनवायरमेंट, वहां पर कैसी उल्टी उल्टी बुद्धियां चलती है, अब उतना धुआं उतना पोल्यूशन, बस वो कौन समझा, फिर वो मिनिस्टर्स इंडिया के वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड देन वो प्रमोट करते कि नहीं हमारे पुराणों में वेदों में तो यही आख्यान है, तो बहुत मतलब आप सोचिए एक उत्सूत्र वचन का कितना कितना दुष्प्रभाव होता है, बराबर, जैसे एक जिन वचन अनंत काल तक अनेक भव्य जीवों के मोक्ष में निमित्त बनते हैं, ऐसे ही एक उत्सूत्र वचन एक शास्त्र से विरुद्ध वचन कई लंबे काल तक कई जीवों के संसार में निबोध में निमित्त बनते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ आचार्य देवों ने ग्रंथ शुरू किया, जैसे जब भी कोई ग्रंथ लिखते हैं जैसे गुणभद्राचार्य लिखे तो वो कविता की बहुत निंदा करते हैं, वो कहते हैं इस जगत में जो जीवों का मन उल्टी चीजें संसार की रसों को लिखने में प्रवृत्त हुआ है, जो लोक को रुझाने के लिए लोक का मनोरंजन करने के लिए कविता या कोई जैसे नॉवेल्स लिखे जाते हैं उपन्यास लिखे जाते हैं इनको लिखते हैं, उनसे बड़ा अहितकारी उनसे बड़ा बुरा करने वाला शत्रु इस जगत का कोई नहीं है, क्योंकि लोग तो बिना सिखाई ही विषय कषाय की बातों को जानते थे, अब इन्होंने रसों के और अलग अलग विभिन्न अर्थों वाले शास्त्र नॉवेल्स ये लिखे, इससे लोगों ने और इसने अपना मन मिल जाए मन करके अपने आप को उलझा लिया, तो वो कवि की बहुत निंदा अपने शास्त्रों में की जाती है कि लिखना ही है तो जिन वचनों को लिखो जो चीज की हितकारी हो उपकारी हो, ठीक है, ये सब अनर्थ दंड में आता है, वैसे दुश्रुति नॉवेल्स पढ़ना उपन्यास पढ़ना कॉमिक्स पढ़ना ये सब अनर्थ दंड है जिसका कोई मतलब नहीं, मैंने एक थ्रिलर नॉवेल पढ़ा राइट,
क्या हो गया, मेरी कहानी तो है नहीं, मुझे तो कुछ है नहीं, क्या मिला आखिर में, बहुत सस्पेंस आया, मजा आ गया जब आखिर में पता पड़ा। तो लोगों को एकदम नशा चढ़ता है पढ़ने का, बट इसको अनर्थ दंड में लेते हैं, दोष होती। जैसे हम और आप बहुत फालतू की बातें करें कि यार ऐसा होना चाहिए दुनिया में, सारे लोगों को मिलना चाहिए और ऐसे सुधार देना चाहिए, अब हम दोनों किसी कोने में मिलकर बात कर रहे हैं, हमारी बात का क्या मतलब है, निष्प्रयोजन है वो बात। तो ये अनर्थ दंड है, व्यर्थ के श्रम का दुरुपयोग है, ठीक है।
हाँ।
तो इस हिसाब से वो वाली कहानी इतनी दो, वो इसलिए मैंने सुनाई आपको कि चार प्रकार के देव, इसमें से तीन प्रकार के देव है, एक तो देवगति के देव है, लेकिन उन पे देव का भगवान मानने की कल्पना कहाँ से, तो अपने हिसाब से अपने पुराणों में, ये तो मारीची के टाइम से ही यहाँ पर 363 मत तो अलग चल ही रहे थे, बराबर। बाकी ये जो होम यज्ञ इत्यादि की परंपरा थोड़ी बाद में शुरू हुई, ठीक है। किसी को इसमें कोई प्रश्न भी? तो अब चार प्रकार के देव में से एक तो देव ही नहीं है जो अदेव कहलाए, उनमें तो कल्पना करना वो तो मूर्खता है। जो देव है वो कोई देव ऐसे नहीं है, वो तो हमसे भी बुरे हैं। अंतर जाति के देव बहुत अशांत हैं, बहुत हमसे ज्यादा मलिन उनके परिणाम होते, भले ही उनकी देवगति हो, उनकी हालत बहुत दयनीय है, उनका चित्त स्थिर नहीं रहता, उनको कुतूहल में ही मजा आता है। तो वो यदि जैन भी रहेंगे, संस्कारवश भी जाएंगे, जैसे जिसने जीवन भर धर्म किया हो, वेंतर की आयु बांध ली, दिन भर ही मंदिर में रहता था, तो अब वो वेंतर बना और वापस अब उस मंदिर में आके अलग अलग चमत्कार करता है। कभी आपने सुना होगा इस प्रतिमा से पानी आ रहा है, या घंटे हिलते रहते हैं, ये वो, तो ये सारी बातें यदि होती भी है तो ये वेंतर कृत है, इसमें जिनदेव का चमत्कार नहीं है, वो कुतूहल वर्ष जिनेन्द्र देव की प्रभावना करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं, वो देखिए जो यदि व्यंतर ऐसा करते भी हैं तो किस लिए करते हैं, कि देखो जिनदेव की प्रभावना हो, सबको लगेगा कितने चमत्कारी भगवान है, राइट। और होता भी है, लोग में सब देखने जाते हैं, चलो भैया बड़े बाबा यहाँ हो गए, या फिर चिंतामणि पार्श्वनाथ, और यहाँ पर ये महावीर जी में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, तो लोगों को क्या होता है, उस अतिशय का प्रभाव भी है। और आपको पता होना चाहिए कि जो व्यंतर ऐसा करते हैं वो भोलेपन में करते हैं, उनको भी तीव्र मिथ्यात्व का दंड होता है, क्योंकि वे वीतराग भगवान के मूल स्वरूप में दोष लगाते हैं, भले ही वे भक्तिवश क्यों नहीं लगाए, मूर्ख है वो क्या कर रहे हैं, भोलेपन में आकर जिनेन्द्र देव के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। जो जीव जिनेन्द्र देव के पास बिना किसी वांछा से आते थे उनकी वितराग मुद्रा को देखने के लिए, अब आपने चमत्कार दिखा दिया तो अब वो वहां भिखारी बन के आते हैं, भगवान मेरे को बेटा दे देना, मेरा परिवार अच्छा चल जाए, मेरा धंधा नया शुरू किया अच्छा चल जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए मेरे एग्जाम में, या नौकरी लग जाए। क्या हुआ, आपने जिनेन्द्र देव के जो पवित्र स्वरूप था उसको कैसा कर दिया, वैसा कर दिया जैसे लोग अन्य कुदेवों के पास जाते हैं, वैसे ही जिनदेव के पास आने लगे, इतना मलिन स्वरूप हुआ, तो उनको बहुत पाबंद वो करते भोलेपन में भक्ति के कारण करते हैं, लेकिन चूंकि तत्व ज्ञान का अभाव नहीं है, बस जीवन भर उन्होंने भगवान की बहुत पूजन करी होगी, भक्ति करी होगी, आरती करी होगी, मालाएं जपी होंगी, लेकिन समझाने की वितरागता की क्या मायने हैं, भोलेपन से कुल परंपरा से करते रहे और पता पड़ा कुल से नहीं यही सच्चे है, बाकी सब झूठे हैं, तो बाकी सबके प्रति द्वेष, वितराग के प्रति राग, इस कारण क्या हुआ कि जिन कुल तो मिला अगले भाव में भी, लेकिन सही ज्ञान नहीं होने के कारण जिनेन्द्र के स्वरूप में भी बहुत अप्रभावना उन्होंने कर दी प्रभावना के नाम पर। सही समझ में, इसलिए हमको कदाचित कभी भी जिनेन्द्र देव के स्वरूप का एक सूत्र कथन नहीं करना चाहिए, कभी भी हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए भूल से भी किसी दूसरे के सामने कि तुम जिन मंदिर में आओ वहां पर तुम्हारी सारी इच्छाओं का पूर्ति होगी। आप ये बोल सकते हो कि तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, क्यों पूर्ण होंगे कि तुम्हारी इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन नहीं, तुम्हें पता है वहां के मंदिर में जाने से तो ये होता है, ये वाला कथन बहुत, क्योंकि लोक में तो लोग बैठे ही इसलिए कि कहां पर चमत्कार होता है मुझे बताओ, और हमने बताया तो वो तुरंत जाएंगे ही, आज समझ में आ रही है देव के स्वरूप में कितना स्पेसिफिकली. अभी जिनेंद्र का शब्द का मतलब हम देखेंगे तो हमको पता पड़ेगा जिनेंद्र क्यों, राइट. ये देव मतलब लोक में समझ लिया जाता है देने वाला वह देव. आपको पता है आप शिरडी का नाम सुना है आपने, शिरडी
सुना है ऐसे वो साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा. हाँ 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 वैसे सुना है और पता नहीं
आपको. मतलब वो कोई नहीं थे, एक फकीर बाबा थे, राइट. इसके बस अच्छे से मिलते थे सबसे, एकदम बढ़िया बात करते थे, दया की बातें. उन्होंने भंडारा करा दिया तो खुद बना लिया भंडारे में, खिलाया गरीबों को, राइट. सो यू जस्ट अम्बुजा जैसे मदर टेरेसा हुई, वो उन्होंने सेवा करी, ऐसे ही थोड़े फकीर थे लेकिन ये भी सेवा करते थे, राइट. बस आज यदि आप उनका देखोगे करोड़ों करोड़ों रुपए का सोना उनकी वहां पर शिरडी में रहता है, भयंकर रहता है. एंड इट्स नॉट लाइक कि कोई उनका कोई धर्म नहीं था, राइट. ही इज नॉट मोमेडियन, ही इज नॉट क्रिश्चियन, ही इज नॉट हिंदू, नथिंग, कुछ नहीं है. किसी को पता ही नहीं है. तो उनके पास मोमेडियंस भी जाते हैं, उनके पास क्रिश्चियन भी जाते हैं, उनके पास एवरीबडी इज आफ्टर देम. सिख लोग, पंजाबी लोग, एवरी वन, एंड इवन जैन लोग. आपको मतलब इट्स क्वाइट शॉकिंग. जैन लोग भी, क्योंकि साईं बाबा किसी से पूछे किस धर्म के हैं, नहीं साईं बाबा किसी धर्म के नहीं है. और उनके इतने बड़े बड़े मंदिर हर जगह बने हैं. लाइक इवन हमारे यहाँ करेलू में मंदिर, मतलब दैट वॉज क्वाइट वेल, मतलब इतना है, इतना बड़ा मंदिर बना है. लोग स्पेशली दे रिजर्व रखते हैं कि यार चलो आज क्यूँकी आज साईं मंदिर में जाएंगे. बहुत दूर बनाया फिर वहां पर सब लोग जाते हैं. एंड किसी मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती जो उस मंदिर में होती है. आप समझ रहे हैं क्या कुछ कह रहा हूँ मैं. ये लोग तो बैठे ही इसलिए हैं, वो अनादि की बुद्धि ही वो है ना कि इंद्रियों की विषयों की प्राप्ति में ही हमने अपना सुख अपना लाभ माना है. तो गलती से कहीं भी पता पड़ेगा कि यहाँ जाने से ये लाभ मिलता है. जैसे ही ये पता पड़ता है हमारे कान अपने आप एंटीना बन जाते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं, सुनने लगते अच्छा कहाँ से है क्या है. तो ऐसा ही जिनेंद्र या जगत के किसी भी देव के संबंध में कहा जाएगा तो हम अपने आप आकर्षित हुए बिना रहेंगे नहीं, करेक्ट.
हाँ.
गुरुदेव श्री का इंटरव्यू लिया था डॉक्टर साहब ने, हुकुम सिंह तिवारी जी ने, उसका वीडियो भी है. इंटरव्यू लिया था छोटे दादा ने, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि लोग कहते हैं कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है, आपके पास जो आता है वो अमीर हो जाता है, बराबर. गुरुदेव श्री बहुत वहां पर बोलते नहीं मेरे पास कुछ नहीं, वो दिखाते ये तो ये है कि पसीना आता है उंगली में तो अभिनय नहीं हो इसलिए रखते हैं. तो बोलते नहीं लेकिन लोग तो अमीर हो जाते हैं यहाँ पर. तो कहते अरे अमीर ये रज, वो आते हैं तत्व की बातें सुनते हैं, बात फाची है, विशुद्ध परिणाम होते हैं, पुण्य बांधते हैं, पुण्य का आ जाता है. धन का रचकर स्वतंत्र है, शरीर का स्वतंत्र, हमारी वाणी, हम ये सब अलग अलग, ये सब स्वतंत्र है. या कोई किसी के कारण कुछ हो जाए ऐसा नहीं. कितना स्पष्ट गुरुदेव श्री का, कितना मतलब आप समझ रहे हैं ये वाली बात क्या है कि कहीं से भी जिन सूत्र के विरुद्ध संभाषण हो जाना. आखिरी आखिरी में यही हुआ ना, जब गुरुदेव श्री की समाधि हुई और उनकी पूरी वहां पर अग्नि दी गई और आखिरी में जो धूली बची, राख बची, लोग उसको लेके गए और अपने घरों में रखे हैं ना उसको. हाँ. तो अंतरंग में कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के वो पड़ा ही है ना वासना. तो
हाँ,
इतना ही रोको तब भी अंदर रह ही जाता है किसी ना किसी के, कहीं ना कहीं से. तो फिर जब बिना बोले ही ऐसी प्रवृत्तियां हैं तो बोलकर उनको इंड्यूस करने का क्या मतलब. इनका तो बिल्कुल प्रकट रूप से निषेध होना चाहिए.
हाँ, वो अनुभव जी वो मुझको नहीं, वो मुझे भी नहीं बैठा. अभी मैंने किसे सुना था कि हाँ कि गुरुदेव के जो जब उसको अग्नि दादी या फिर वो राख जो है वो एक,
अरे अगली सुबह वहाँ पर राख ही नहीं बची थी, सब लोग घर भर के ले गए.
हाँ, मगर
अभी कई लोग रखे उसको किसी डिब्बी में अपनी. हाँ,
तो वो राख रखने का कि वो तो पुद्गल है और वो तो जीव है तो वो रखने का क्या.
अरे तो लोगों को लगा ना कि ये तो एकदम पवित्र है और ये गुरुदेव की है, तीर्थंकर की चीज की है और ऐसा और वैसा, तो अपने घर में भी पवित्रता रहेगी। ये जबकि शमशान की रात को इन शमशान से जब हम आते हैं तो हम स्नान करते हैं, वो इतनी अपवित्र होती है। लेकिन वो वही तो बोल रहा हूँ, जहाँ पर जब हमारी बुद्धि ऐसा करने लगती है, हम यही बता रहे हैं कि कहीं भी थोड़ा भी इस जीव को कुछ आकर्षित दिखता है, ये बुद्धि सबसे पहले बंद करता है, तर्क सबसे पहले इसका गायब होता है।
तो ये तो गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव का सारी जिंदगी का मंत्र भी लोग भूल गए राख के पीछे के, एक द्रव्य बिजन
रख। वही वही उनके मानने वाले बड़े बड़े और अभी भी यदि कई लोग हैं जो प्रसन्नता से उनके घर जाओ तो दिखाते हैं, देखो गुरुदेव कहीं से रखे हैं यहाँ पर।
हमने लास्ट वीक हमने गुरुदेव की जन्म जयंती का प्रोग्राम मनाया था, फिर हमारे मोना के दूसरा हमारा एक है यहाँ दूसरी संस्था, तो वो उन लोग वीकडेज में मनाते हैं। तो आई वॉज सरप्राइज कि हमारा एकदम प्रोमिनेंट, जिसको तुम सोचोगे, वो उन्होंने बोला कि हाँ गुरुदेव की राख बोतल में उसकी वाइफ लेकर आई थी, अभी भी घर में पड़ी है। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे के सामने देखने लगे कि ये क्या, ये तो मिथ्यात्व है।
वही 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 मतलब ये अभी इसलिए ये जो एक एक लक्षण यहाँ पर दिया है ना, वो लक्षण एक एक अभी दौलत राम जी इसको इसलिए मतलब बहुत नपा तुला अपन इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि लोक में देव की कल्पना कहाँ कहाँ तक है। एक छोटा सा पत्थर हो उसको भी लोग मान लेते हैं कि इसमें देव भगवान है, क्योंकि ये पूर्ण इसको रखने से शुभ होता है। आपने देखा होगा अलग अलग रंगों की, मुंबई में बड़ा बड़ा धंधा चलता है। क्या हुआ, मुंबई की जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स है जो महाराष्ट्रीयन बेसिकली है, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, एक पंडित को बैठाते हैं जो कि रत्न का ज्ञाता होता है, ठीक है, और वो फ्री में आपको एडवाइस देता है कि आप ये वाले कलर का रंग वाला करो तो आपका अच्छा होगा। तो क्या वो एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं कि फ्री में आपको सलाहकार देने के लिए ज्योतिष का पूरा फ्री में एडवाइस है, उनकी कंसल्टिंग, और आप आइए हमारे यहाँ और अलग अलग रंग के रत्न देखिए। अब वो है कुछ भी, वो प्लास्टिक के जिसके भी उन्होंने बनाए हो, कहाँ से ओरिजिनल, क्योंकि वो तो बहुत महंगे आते हैं जो ओरिजिनल है, रत्न जो होते हैं ओरिजिनल। तो बट लोग अब जाते हैं, अलग अलग कलर की अंगूठियां पहनते हैं, घर में यंत्र रख लेते हैं, ये वो कई जगह आपने देखा होगा पानी के अंदर एक कछुए को रखते हैं पीतल के, कई जगह साथिया को रखे रहते हैं वो लोग। सो ये सारी चीजें लोग यहाँ पर, लोगों की बुद्धि है कि वो किसी भी चीज को देव मान लेने को तैयार है, किसी भी चीज को, उसका आकार हो या नहीं हो, उसका कुछ भी हो, बस एक इंड्यूसमेंट चाहिए कि मैं, यदि मैंने एक पेड़ को यहाँ पर सामने नमस्कार कर लिया, तो यदि मेरे पीछे 10 लोग आ रहे हो उसमें से एक ने भी मुझको देखा और उसने किया, तो 2 लोगों ने किया, अब आगे पीछे 10 लोग और फिर उसमें से एक, ऐसे कर करके 100 लोगों में से 10 लोगों का तो वो मंदिर बन गया ना, बिना किसी बात का, कुछ पता ही नहीं है क्यों क्या कैसे कब, इतनी सारी चीजें चलती। पेड़ के पूरे वो धागे बांधे जाते हैं आजू बाजू करवा चौथ वगैरह के, तो पेड़ को राखी बांधते हैं रक्षाबंधन में, क्या नहीं करते। अब वो क्या बेचारा पेड़ एक इंद्रिय जीव है, उसके दुखों की क्या बात बताए, उसमें देश की कल्पना मूढ़ता से बराबर। तो यहाँ पर अब देव को जिनेन्द्र क्यों लिया, अब हम वो समझे, चार के कार के देव को तो समझ में आए, वन इज सुदेव जो वीतरागी सर्वज्ञ तो उपदेशी है, ठीक है, सेकंड इज देव जो चार है ज्योतिष व्यंतर वनवासी और कल्पोत्पन्न यानी वैमानिक, ठीक है, और फिर जो बाकी के इन जो चार देव है इसमें कुछ व्यंतर और व्यंतर आदि देव कभी यहाँ पर आकर उपद्रव करते हैं और कभी कभी अपना अतिशय चमत्कार आदि भी दिखाते हैं बराबर। तो उनके कारण उनमें जो धर्म बुद्धि हो जाती है वो कुदेव, वो है देव, वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो है सच्चे देव, तो वो क्या कहलाएंगे, कुदेव। इससे उनको अनंत संसार का बंद होता है और जो उनको मानते हैं उनको होता है, दोनों को चलता है ये।
उसमें उसमें ज्यादातर व्यंतर ही होंगे ना, व्यंतर होंगे कि ज्योतिष
व्यंतर व्यंतर इस काल में बाकी से ज्यादा नहीं आते हैं, ज्योतिष लोग का आने का सवाल नहीं होता, वो ऊपर होते हैं, लेकिन सूर्य देव को पानी देना, सूर्य नमस्कार करना, चंद्र देव को देखते रहना, ये सब ये सारा ये ज्योतिष देव पर देव की कल्पना हो गई बराबर। ऐसे व्यंतर यहाँ पर मूलतः जो आते हैं वो व्यंतर ही है, व्यंतर ही है। ये जो बड़ी बड़ी जितने भी देवों के नाम हमको पता है ये सब व्यंतर है, बराबर। ये पद्मावती, धर्मेंद्र वगैरह ये सब विशिष्ट कुंडली की व्यंतरों की अलग अलग जातियां जो है वो ही है। इनमें सब कल्पना, इनको अलग कोई भूत बोलते हैं, कोई पिशाच बोलते हैं, कोई तिलविषादी होते हैं, अलग अलग होते हैं।
एक वस्तु आपने बोली थी कि वो के हाँ हम मंदिर में के जाते के तो बोलते कि हाँ इससे लाभ होएगा के नवोकार मंत्र बोलो तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो वैसे बच्चों को भी ना वो भी तो ठीक नहीं है ना,
मतलब बच्चों को बोलना ऐसा कि इच्छा पूर्ण हो जाएगी ये भी चीज नहीं है, बराबर।
हाँ हाँ, क्योंकि हमारे क्या है,
बिल्कुल
क्योंकि वैसा वो तो मिथ्यात्व ही हो गया ना वैसा, क्योंकि हमारा छोटा मंदिर
करेक्ट करेक्ट
हाँ हमारा दूसरा
तो बहुत बड़ा हो चुका है, ये हो चुका है मिथ्यात्व कितना बड़ा हो गया। अभी भी कोई चीज होता है तो वो लोग क्या करते हैं विपत्ति में नवोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, बराबर। बहुत अच्छी बात है, आप करो, आप पवित्र हो या पवित्र, जो नवोकार को जाता है चाहे सुस्थित हो या दुस्थित पाप मुक्त हो जाता है। ये वाली बात तो हो गई ठीक है कि पांच परमेष्ठी के स्मरण में स्वरूप का स्मरण है, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठी पंड, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, ये गाथा है कुंकुंडाचार्य देव की, बराबर। तो इनका स्मरण है स्वरूप का, आत्मा का स्मरण, आत्मा की विशिष्ट पर्याय है ठीक है। तो यदि इन पांच का स्वरूप पता हो और इनका स्मरण हो रहा हो बहुत अच्छी बात है, बट जब लोग इसको ग्रहित मिथ्यात्व की बुद्धि से करने लगते हैं, जैसे गंधोदक को ग्रहित मिथ्यात्व की बुद्धि से लगाया जाता है, कहीं हर जगह लगा लिया, आंख में, नाक में, कान में, पेट में, हर जगह लगा लेते हैं गंधोदक को, राइट।
जैन
दर्शन भावनात्मक है, आपकी आप नमोकार मंत्र क्यों हमेशा पढ़ते रहते हो, क्यों पढ़ते रहो, आपको लगता है कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। इससे आपको निदान बंद हो रहा है, निदान बंद के दो काम है, एक तो जो आपकी इच्छा है वो उस संबंधी पुण्य को बांधना शुरू करता है, और दूसरा काम कि जो आपकी सत्ता में पुण्य है उसका नाश करना शुरू करता है। तो बड़ा धोखे का फायदा दिखाता है, वो दिखता है निदान से फायदा होता है, बट वो एक्चुअली आपसे ही पैसे लेकर आपको ही, जैसे कि मुझे चाहिए कार ठीक है, मुझे कौन सी कार चाहिए, मुझे चाहिए छोटी सी कार, एक कौन सी लाइक से मारुति चाहिए मुझे, मारुति सुजुकी कोई भी मान लें, मेरे पुण्य में पड़ा है कि मैं कोई ऑडी बीएमडब्ल्यू ऐसी कोई बड़ी कार लूं। तो क्या करेगा ये जो निदान है, क्या करेगा कि मुझे मारुति देने वाला पुण्य देगा, कैसे देगा कि जो मेरा बीएमडब्ल्यू वाला पुण्य है उसी को क्षीण करके, तो उसको उसने भी क्या बोलते कैलिब्रेट कर दिया मेरे हिसाब के लिए, उसने मेरी जरूरत के हिसाब से काट दिया उसको, राइट। जैसे दर्जी के पास हम कपड़ा लेके गए तो इतना बड़ा था, उसने अपनी हाइट साइज के हिसाब से बना दिया, बाकी का अलग कर दिया। ऐसी निदान अपने पुण्य को जितनी अपनी छोटी इच्छा उसके हिसाब से वो बना देता है, और संसारी चीज ज्यादा अच्छी इच्छाएं कर ही नहीं पाता है, वास्तविकता तो ये है, हम लोग इतनी बड़ी इच्छाएं करते ही नहीं है, छोटे छोटे सपने हमारे, चलो भी एक अच्छा घर हो जाए, फैमिली में सब खुश रहे, सबकी शादी अच्छे से हो जाए, आप सोचते हो कभी की चक्रवर्ती बन जाओ, तीर्थंकर बन जाओ, हमें ये सोचती नहीं है क्योंकि हमें क्या लेना देना, अभी हमारे पास जो घर है भाई छोटा मोटा यही चलने दो, अच्छे से हमारा नाम हो जाए तो हमको जानने लगे भाई। तो निदान की हमारी इच्छाएं इतनी छोटी, राइट। इसलिए वहां पर लिखा क्या कि तुम सम दातार पाए काग लघु जाचू, कहा प्रभु आपके जैसा दातार मुझको मिला शांति पाठ में, शांति पाठ में हम बोलते हैं शास्त्रों की विधि पूजा में, ये भगवान आपके जैसा दातार मिला है, मैं छोटी मोटी चीज क्या मांगू आपसे, मुझे आप सम कर ले हूँ स्वामी, यही एक वांछा मांग कि आप मुझे छोटा मोटा कुछ नहीं चाहिए, आप तो मुझे अपने जैसा कर दो। तो रमोकार मंत्र, भगवान का नाम, शांति धारा, शांति पाठ, ये सब के पीछे जो भावनाएं थी वो तो कुछ और थी, अपने आत्मा के उज्जवल स्वरूप को पर्याय में भी प्रकट करने की, कि मैं पूर्ण हूँ, मैं भगवान हूँ और मैं भगवान बनूं, ये वाली भावना थी उसको करके। नहीं नहीं, मैं गरीब हूँ अमीर बनूं, मेरा रोग है निरोगी बनूं, ये जो छोटे छोटे हितों में हम इसको ले आए हैं, इसमें ग्रहित मिथ्यात्व का रूप ले लिया है। और ये इसकी जड़ें बहुत लंबी हो गई हैं। आपको पता है शांति धारा कितना बड़ा एक वो बन गया है आजकल के जमाने में?
हाँ,
कितना, आप क्या बताऊं मैं। अभी क्या होता है, कुछ यहाँ पर है कि कई जगह जो हमारे पुराने क्षेत्र है उनका रिनोवेशन चल रहा है, तो कुछ कुछ महिला जैसे हैं जिन्होंने सिर्फ रिनोवेशन का ही जैसे कि एक ऑक्यूपेशन ले रखा है, तो वो अभी जैसे ललितपुर में पुरानी नसिया जी थी बहुत बड़ी, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर, वो पूरा तोड़वा दिया गया और अब वहाँ रिनोवेट होके नया बन रहा है, क्यों नहीं पता।
मुनिराज को वैसा तो वे पहले तो वो धंधा ही नहीं करना चाहिए ना।
वो मुनिराज को तो कार्तिकेय परीक्षा में स्पष्ट निर्देश है कि यदि वो मंदिर बनवाता है या पंचकन्याण करो, मूल गाथा है कार्तिकेय परीक्षा की धर्मानुपरीक्षा में, यदि मुनिराज मंदिर वसती का घर धर्मशाला पंचकन्याण इत्यादि कुछ भी कराता है तो वह मुनिराज गृहस्थ के समान है, पूज्य नहीं है, वह मुनिराज ही नहीं, उसके महाप्रति नहीं है, सावधि योग चलता है उसके। ठीक है, वो जाने दीजिए, तो मैं क्या बता रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ क्या लगता है। तो जब वो मंदिर तोड़वाया जाता है ना, तो क्या बोली लगती है आपको पता है? प्रथम कलश को उतारने की बोली, भगवान की कलश की विच्छेद उतारने की, मतलब पहले मैं कलश उतारूंगा मंदिर का, मतलब आप समझो कि क्या स्वरूप हो गया है धर्म का, भगवान की मूर्ति को हटाने, मतलब उसका नाम की विस्थापन है, इसके विस्थापन की उच्छेद की बोली, पहले वेदी को तोड़ेगा कौन, इसकी बोली।
ओह माय गॉड,
ये
नहीं है, फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं।
कैसे आप सुनने में कैसा लगता है बताओ, मंदिर तोड़ने के लिए मैं पैसे दूं, बोली दूं, आप रिनोवेशन बोलो, उसका पुनर्निर्माण बोलो, दैट्स
दो लोग क्या दिगंबर है या दो और
उसमें? अरे दिगंबर तेरा पंचामनाए के लोग है,
अच्छा अच्छा,
बहुत बड़े जाने माने जंगल वाले मुनिराज के इलाके में हो, लेकिन ये काम चल रहा है। फिर जो शांति धारा मैं बोल रहा था, भगवान की प्रतिमा को रखकर उनके ऊपर शांति धारा होती है, तो क्या बताए कि शांति धारा में क्या था कि पूरे हो शांति सारे विश्व में, बराबर अपन जब शांति धारा पढ़ते हैं कि सारा विश्व शांति में, मतलब सब क्षमा को धारण करे, सब अहिंसा को धारण करे, सब आत्मित करे, ये तो उसका मेन इंटेंशन था, भावना थी, बराबर। अब लोगों को लगा कि भगवान के ऊपर पानी डालने से सचमुच सारे विश्व में शांति हो जाएगी, तो जैसे बाकी के लोग यज्ञ नहीं करते हैं, हमारे यहाँ शांति धारा शुरू हो गई है। तो शांति धारा की ऐसी बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं, आपने कभी देखा हो तो मुझे नहीं पता, आप कभी भारत आएंगे किसी भी एक्सवाइजेड मुमुक्षु मंदिर को छोड़कर किसी भी मंदिर में प्रक्षाल के टाइम आप चले जाइएगा, पूजन के बाद जो शांति धारा होती है उसको आप देखिएगा, पागलों की जैसी कैसी बोलियां लगती है, और कि हम शांति धारा देंगे, और फिर कैसे कहते क्षम क्षम ड्रीम ड्रीम रावे रावे, और फिर उसमें ये छिन्न छिन्न देही भिन्न भिन्न देही, ये बिगड़ जाए ये कट जाए ये चला जाए, ऐसे ऐसे शब्द ऐसे मंत्र जिन प्रतिमा के ऊपर प्रयुक्त नहीं होते, जो यदि किए जाए यंत्र के ऊपर कर लिए जाए।
ये जो मुनि मार्गी है हमारे यहाँ छोटा मंदिर है ना, वहाँ वो ज्यादा उन लोग है, तो वो उन लोग करते
हैं, और वहाँ आप नोटिस करिएगा जो यंग लोग होंगे, जो यंग लोग होंगे वो लोग करते होंगे इसको, यंग कपल्स आए होंगे जॉब कर रहे हैं बराबर, वो लोग करते हैं क्योंकि उनको कुछ और सिखाया नहीं जा रहा, कुछ उनको नहीं पता है, तो उनको पता है कि क्या करना है, संसार में बहुत पाप चल रहा है, अपन को अपन शांति धारा देंगे, शांति होगी संसार में, सबसे बढ़िया काम क्या है, शांति धारा देना।
श्वेतांबर में
श्वेतांबर
में शांति धारा,
हाँ श्वेतांबर, वही तो बोल रहा हूँ, सब इधर उधर से क्या कर क्या स्वरूप बन गया है हमको समझ ही नहीं आ रहा है अभी।
नहीं,
जो भी प्रोफेसर सुधीर थी, सुधीर पंडित जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये वाली इसका इसमें उन्होंने एक लेख निकाला था, एक आर्टिकल निकाला था कि हम क्या कर रहे हैं शांति धारा करके, बिलागम सम्मत है ही नहीं और इसको जिंदेद की प्रतिमा के ऊपर करना ये तो घोर पाप बंद का कार्य है।
हाँ।
अब क्या कर रहे हो
ये सुदीप जी, आप बोलते वो दिल्ली वाले?
हाँ सुदीप जी दिल्ली वाले जिन्होंने वो बहुत
अच्छे
बहुत प्रकांड विद्वान है और उन्होंने मुनियों के स्वरूप पर भी बहुत सारी चर्चाएं निकाली है, वो अच्छे अच्छे लेख लिखते रहते हैं। उन्होंने कुलकुल आचार्य की सिद्धि करी कि वे श्रीमंदर स्वामी के पास गए थे प्रवचनकार के रेफरेंस उन्होंने प्रूफ दिया कि देखो ये प्रूफ है कि कुनकुंड आचार्य देव गए थे श्रीमंदर भगवान के पास।
तो अभी ये
तो बहुत अच्छे विद्वान है, उन्होंने अभी
पंडित जी अभी ये बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक हुआ तो उसमें 12 साल में होता है तो वहाँ तो पानी दूध वगैरह बहुत सारे चीज यूज
और आप यदि ऐसा बोलोगे कि क्या कर रहे हो तो फिर आपको तर्क भी जो सुनने मिलेंगे आप मतलब कुछ बोल नहीं सकते लोगों को समझ। यही बोल रहा हूँ मैं, जो श्रद्धा का नशा होता है जो बिना विचार के अतर्क बुद्धि से किए गए विश्वास श्रद्धा का जो बल होता है वो आसानी से नहीं छूटता, उसके लिए गुरुदेव जैसे पुरुष की वाणी लगती है। फिर आपकी और हमारी भाषा से कुछ नहीं होता, वो तो गुरुदेव का पुण्य था कि बताओ क्या हिला दिया उन्होंने कि पुण्य धर्म नहीं है, किसी की बस की बात है आज समझा दे इतना गुरुदेव बोल के चलेगा और आप और हम बोले तो लड़ाई हो जाए झगड़े हो जाए। तो गुरुदेव का पुण्य था या गजब के पुरुष थे वो, तो पुण्य धर्म नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, भगवान कुछ नहीं करते तुम्हारे वो मोक्ष नहीं देंगे, उनके दर्शन से जो हो वो कुछ नहीं है, इतना कैसा तत्व उन्होंने हमको दिया, यही उनकी महिमा है गुरुदेव की। आप समझो कि कितना कठिन और दारुण पक्ष होता है अपने मत का और गुरुदेव श्री ने उस मत का हमारे अंदर से एकदम उखाड़ के फेंक दिया। जिन ने उनकी वाणी सुनी वो अंदर से हिल गया, वो स्वप्न मेरी मानने को तैयार नहीं थे। देखो अपन भी पूजन नहीं करते क्या भगवान की? हम और आप पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसी करते हैं जैसे कोई नहीं करता, लेकिन हमें एक बार भी ऐसा लगता है कि भगवान कुछ दे दे?
नहीं।
मतलब कितना कैसा गजब का विश्वास, कैसी गजब की मनोवृत्ति गुरुदेवश्री ने हमको दी, जैसा हमको एकदम ना दीन बनाया ना हीन बनाया, क्या स्वाभिमान हमारा जागृत रखा कि हम भगवान से भी क्या मांगे, हम पूरे हैं ना, हम स्वयं भगवान है ना, हमें दरकार क्या है किसी से कुछ देने की? वो ये इसलिए दौलत राम जी बोल रहे कि देव मतलब जिनेन्द्र, जिसने इंद्रियों को जीता है इतना नहीं, जिसको 100-100 इंद्र सामने जिसके चरणों में लोट रहे हैं, मतलब ऐसा कैसा जिनेन्द्र कि जिसने कुछ इच्छा नहीं करी उस अनिच्छक के पास जाओ जिससे तुम्हें भी मांगने की आदत खत्म हो, वो देव है। आदर्श कौन? जो स्वयं अनिच्छक है, जो स्वयं स्वाधीन है, जो स्वयं पूर्ण है, जो अपने में ही सीमित है, ऐसे देव को आदर्श बनाओ। जो देता है, जिसने हाथ आशीर्वाद देने के लिए प्रयुक्त किए हैं, जिसने धनुष बाण रखे हैं, जो स्वयं ही काम से पीड़ित है, जो जगत के उद्धार में अपना समय खराब करता है, जगत के स्वरूप को नहीं जानता कि यहाँ पर कुछ बुरा और अच्छा तो होता ही नहीं, काल नहीं बदलेगा तो सुकाल कैसे आएगा, दो काल नहीं आएगा तो चक्र कैसे चलेगा, तो जिस जगत में अच्छा बुरा कुछ होता नहीं, उस जगत में जो सुधार की उसके उद्धार की बात बताए, वो जगत के स्वरूप से भिन्न अज्ञानी है कि जगत का भगवान है? तो ऐसे देव के पास में देव की कल्पना क्यों करूं? जिनेन्द्र मतलब ऐसा नहीं जो अरेन भगवान हो, जिनेन्द्र मतलब जिन इंद्रिय जिनता, जिसने इंद्रियों को जीता है। इंद्रियों को जीता है मतलब जिसके अधीन संसार है, ऐसी समस्त इच्छाओं को जिसने जीत लिया है, वो देव, वो आदर्श, वो मेरा देव, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। अब उसको बुद्ध कहो, वीर कहो, जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, जो कहना है कहो, होना चाहिए वो जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मतलब अरेन्द्र भगवान की प्रतिमा हो नहीं, जिनेन्द्र मतलब जिस पुरुष ने इंद्रियों को जीता हो, कोई हो, तुम्हें बुद्ध में लगता है तो बुद्ध को दो, इंद्रियों को जीतना चाहिए उसको बुद्ध नाम दे दो, हरि नाम दे दो, ब्रह्मा नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु कुमार मुमदार है, विष्णु नाम है तो मुझे मालूम है नाम से कुछ नहीं है।
एक लाइन बे लाइन नहीं चालो।
हेलो
यार
आई एम सॉरी मेरा टाइम ज्यादा ले लिया, ऑलरेडी 7:10 हो गए। तो इस पर हमने आज थोड़ी चर्चा करी क्योंकि तो अभी हमने इसलिए समझा कि जिनेंद्र मतलब अरिहंत भगवान ऐसा नहीं है ना, कोई प्रतिमा को नहीं समझना। जिनेंद्र मतलब गुड़, जिनेंद्र मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, मतलब आत्मा को प्रगट प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो अपन इसकी और चर्चा और फिर अब जो गुरु का लक्षण दिया है वो इसमें जो जब हम उस पर थोड़ी चर्चा करके फिर जानेंगे कि देखो जो पंडित टोटामल जी ने बोला अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्तम पदार्थ है, इनके आधार से ही धर्म है। ये वही वाली लाइन पंडित दौलत राम जी ने दी है, देव जिनेंद्र गुरु परिग्रह धर्म दयादिक सारो, यही जान समकित को कारण, यही जान समकित को, यही धर्म के कारण है, सम्यक के कारण है, ठीक है। आप लोग थोड़ा इस पर विचार करना, हम अभी कक्षा में फिर से इस पर चर्चा
करेंगे।
हम लोग
अनुभव जी एक उषा बेन का क्वेश्चन था, उषा बेन बोलो।
इस ओके मैं तो वही पूछने वाली थी जो आप वो दया की बात बोलते थे ना, मगर आप नेक्स्ट टाइम लेने वाले हैं ना तो तभी करेंगे।
हाँ लेंगे लेंगे, अभी अकेले हमने देव की बात करी है आज, अभी हम गुरु की भी करेंगे और दया की। धर्म मतलब दया क्यों बोला, या अहिम का बोल सकते थे बराबर, या वितराग का बोल सकते थे, दया क्यों बोला, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे।
थैंक यू
चलिए चलिए जिनवाणी सूची करते हैं। जवान के ज्ञान थे तुझे लो पालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा तुम धो, नौबाणी में कर लो। Eight minutes, I think.